अभ्यक्तवाणी 7 मई 1983। कुमारों के साथ अलग अलग ग्रुप से गॉडली यूथ ग्रुप। लौकिक रीति से वह यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य नुकसान करना है। आप लोगों का काम है स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती है। इतने युद्ध हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाए तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमे। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला वाला तो नहीं है। युद्ध ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। युद्ध जो चाहे वह कर सकते हैं, वह विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य वाले। वे अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले हो। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पक्के कुमार हो जो कभी हलचल में ना आवे, ऐसे नहीं यहां नाम वाला हो और फिर वहां पुरानी दुनिया में चले जाए। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते, फिर थोड़ा सा टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते। छोड़ी हुई चीज फिर से जाकर ले तो अच्छा लगता है। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना। अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गॉडली युद्ध ग्रुप समझो। इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे यह देवता बनकर आ गए। ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ। युद्ध को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है। गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने के निमित्त आप लोग बनते हो। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाने चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। अच्छा, सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होती है होगी तो निर्विघ्न होगे। जब सतयुग गुड मॉर्निंग होगी तो निर्विघ्न होंगे। अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। विशेष शुभ दिन कहते हैं ना, शुभ प्रात कहते हैं, तो शुभ प्रात अर्थात जिसमें अशुभ कुछ नहीं। आप सबकी सदा ही शुभ प्रात है, शुभ दिन है और शुभ रात्रि है, तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ। इसलिए निर्विघ्न भव की गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो बाबा कुमारों के साथ बात कर रहे हैं। यह है गॉडली युद्ध ग्रुप। लौकिक रीति से वह युद्ध ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य कैसा है? विनाशकारी है। तुम्हारा कैसा है? स्थापना का है। तो उन्हों का कार्य नुकसान करता है। आप लोगों का काम है स्थापना का कार्य और उनका है विनाश का। आपका कंस्ट्रक्शन और उनका डिस्ट्रक्शन। इस कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण या विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती है। इतने युद्ध हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाए तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमे। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला वाला तो नहीं है। युद्ध ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। युद्ध जो चाहे वह कर सकते हैं। युद्ध अर्थात सदा उड़ती कला। युद्ध अर्थात कभी रुकने वाला नहीं। युद्ध अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाला। युद्ध जो चाहे वह कर सकता है। युद्ध कौन है? युद्ध का संबंध उम्र से है या मन से? युद्ध किस अवस्था का नाम है? ऊर्जावान अवस्था जो है उसका नाम युवा है। युवा होने का संबंध देह की उम्र से नहीं है या देह की व्यवस्था से नहीं है, परंतु ये स्थिति है मन की, वार्धक्य से नहीं है। ओल्ड एज से यूथ का देह के वार्धक्य से उसका कोई संबंध नहीं है। यूथ का, युवा का संबंध मन की स्थिति से है। मन का ऊर्जावान होना, मन का उमंग उत्साह, मन की शक्ति पावर ऑफ द माइंड, उससे ज्यादा संबंध है युवा होने का। शरीर भल बूढ़ा हो जाए परंतु मन सदा ही शक्तिशाली रहे। युवा सी जो शक्ति है, युवा सा जो हिम्मत है, साहस है, वो सदा उसमें कायम रहे। वह चित्त की अवस्था, वह चित्त की जो दशा है, वह युवा अवस्था है। तो युवा अर्थात बाबा कह रहे हैं कि सदा उड़ती कला में, कभी रुकनी रुकती कला वाला तो नहीं है। रुकने वाले को क्या कहा था बाबा ने वरदान में कुछ समय पहले? घोड़ेसवार। और थकने वाले को? प्यादा। और सदा चलने वाले को? महारथी। तो कहीं रुकना नहीं है। ये जो मार्ग है अध्यात्म का मार्ग, या जो मार्ग हमने चुना है, उसमें सदैव चलते जाना है। युद्ध ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। सेवा भी जो करे वो शक्तिशाली मन की स्थिति में हो और शक्तिशाली हो। युद्ध जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सकते। जो कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए यदि संभव है तो हरेक के लिए वो संभव है। यदि किसी एक ने वो कर दिखाया है तो हरेक वो कर सकता है। ये एक सूक्ष्म तत्व है, सिद्धांत है कि जो एक कर सकता है वो सभी कर सकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में आगे चला जाता है तो हरेक उसी क्षेत्र में आगे भी जा सकता है। इतनी क्षमता, कैपेसिटी, पावर, टैलेंट, प्रतिभा उस हरेक व्यक्ति में है। इसके लिए स्वयं को कहीं बांधना नहीं है कि इसने किया परंतु मैं ये नहीं कर सकता, इसकी तो ये आदत है, इसका तो ये स्वभाव है, इसको तो इस तरह का पृष्ठभूमि प्राप्त हुई थी, इसकी तो बुद्धि पहले से ही तेज है, इसका तो साथ भाग्य हमेशा से ही रहा है। ये सब बहानेबाजी है। जो एक कर सकता है वो हर एक कर सकता है। इसके लिए वह विनाश युद्ध अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले जो चाहे वह कर सकते। युद्ध, युद्ध और युवा, युद्ध
युद्ध
तो युवा अर्थात जो चाहे वह करने वाले। कुछ भी असंभव नहीं, असंभव ये शब्द ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को करने की कुछ ना कुछ युक्ति है, उस युक्ति को ढूंढ लेना है। कुछ ना कुछ युक्ति है। यदि किसी ने किया है कोई भी बात तो जरूर उसके पास कोई मार्ग है, कोई ऐसी तरकीब है, कोई कोई टेक्निक है, कोई मेथड है, कोई विधि है, कोई मेथडोलॉजी है। उस विधि को ढूंढ लेना, उस विधि को प्राप्त कर लेना, उसकी खोज करना, बजाय इसके कि दुखी हो जाए और ये सोचे कि इसने किया परंतु मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी बुद्धि कहां। युद्ध ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले जो चाहे वह कर सकते हैं। जिस जिस बात को करने में हमें लगता है ये हमारे लिए असंभव है, उसी को सबसे पहले करना है। अगर किसी और ने वो कर दिखाया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम में ऐसा क्या है? कौन सी वो कमी है? फोकस उसके ऊपर हो और वो हम कर सकेंगे।
हमारे कॉलेज
तो
उन्होंने ऐसा करके दिखाया, किताब लिख के भी दिया, उनका जो डिफिकल्टी था सॉल्व कर दिया।
ऐसा कुछ है ही नहीं। मनुष्य का मन इतना शक्तिशाली, अगर वो फोकस्ड हो जाए तो कुछ भी हासिल संपादन कर सकता है। कुछ भी असंभव कुछ है ही नहीं उसके लिए। किसी भी क्षेत्र में उसे लगाओ, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड को किसी भी क्षेत्र में, फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में लगा दो, उसमें ही वो आगे जाएगा। ऐसा विषय कि जिसमें बिल्कुल भी हमें इंटरेस्ट भी नहीं है, परंतु यदि हम फोकस करें, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें, तो उसमें भी आगे जा सकते। ऐसे विषय जैसे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये कठिन विषय है, परंतु एकाग्रता वाला मन कहीं पर भी लग सकता है। यहां बातें सेवाओं की चल रही है। तो संसार के जो युवा है वो क्या कर रहे हैं?
नुकसान।
जो भी कर रहे हैं उससे नुकसान ही हो रहा है। वह विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य वाले। हम जो स्थापना का कार्य कर रहे हैं वो इतना सूक्ष्म है, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा कार्य संकल्पों के द्वारा हो रहा है। संकल्प एक एक ईंट का काम कर रहा है जो उस अदृश्य भवन, गुप्त दैवी राजधानी, गुप्त दैवी परिवार की स्थापना कर रहा है। यह ईश्वरीय फैमिली टाइप ये सूक्ष्म है, इतना वो स्थूल है, पर उसका उसकी स्थापना अभी हो रही है। वे अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप। शांत स्वरूप हो जाना यही बहुत बड़ी सेवा है। शांत स्वरूप हो जाना अर्थात ये कहीं भागने की दौड़ नहीं है, क्योंकि जो हमने खोया नहीं है, अगर हम उसे पाने जाते हैं तो हम अपने आप से ही दूर जा रहे हैं। है वस्तु यहां और उसको ढूंढने के लिए हम कहीं और जा रहे हैं, मतलब हम अपने से ही दूर जा रहे हैं। मनुष्य का सारा ही प्रयास भागने का है, दौड़ने का है, परंतु यह दौड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम वही हैं जो हम हैं। बड़ा दुखी करता है ये वाक्य, क्योंकि मनुष्य के मन में निरंतर एक तनाव है, क्योंकि उसे कुछ पाना है, उसकी कोई मंजिल है, उस मंजिल के लिए उसे दौड़ना है। हम वही हैं जो हम हैं, पहले से ही हम ही मंजिल है। इसके लिए यहाँ दौड़ना अर्थात दौड़ना है ही नहीं। द स्टेट ऑफ नो सीकिंग, भागना ही नहीं, यही स्थित हो जाना, शांत हो जाना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जैसे वो कहा था ना, कोई शराब पीकर व्यक्ति अपने ही घर के सामने खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे अपने घर पहुंचा दो, मुझे अपने घर पहुंचा दो। सारा गांव एकत्र होता है, कोई तो बड़ी सहानुभूति से भरते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं अपने घर। वो जहां पर भी जाएगा अपने आप से अपने घर से दूर जाएगा। वो कहता है मेरी माँ से मुझे मिलाओ, मुझे घर अपने ले चलो। उसकी माँ कहती है मैं ही तेरी माँ हूँ। वो कहता है नहीं, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपने घर जाना है। वो कहती है यही तुम्हारा घर है, क्योंकि वो बेहोशी की अवस्था में, उसे पता ही नहीं कि यही घर है। बैलगाड़ी आती है और उसको घुमाने लेके जाती है। जितना वो ज्यादा आगे जाएगा अपने आप से दूर जाएगा। कहीं न जाने की अवस्था ही आत्मस्वरूप में स्थित होना है। द स्टेट ऑफ नो सीकिंग, द स्टेट ऑफ नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि हम वही हैं जो मंजिल है, हम ही मंजिल है। इसमें थोड़ी कठिनाई है। मनुष्य को दौड़ने की आदत है, मंजिल सामने है, दौड़ो, भागो, मिला नहीं है, बेचैन रहो, तनाव क्रिएट करो, स्ट्रेस क्रिएट करो। यहां तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है, तुम ही मंजिल हो। मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति की यह दौड़ बंद। वह युवक अशांति मचाते हैं। शांति खोई कहां है, ढूंढ कहां है? जैसे वो बुढ़िया की कथा, सूफी संत रबिया, सुई उसने घर के अंदर खोई है, परंतु जानबूझकर वो बाहर ढूंढती है, क्योंकि प्रकाश वहां है। जब कोई युवक आता है और उसकी मदद करता है और नहीं मिलती है, तो युवक पूछता है कि सुई तुमने खोई कहां थी? वो कहती है कि घर के अंदर, परंतु मैं वही कर रही हूं जो सारा समाज कर रहा है, सारा संसार कर रहा है, सारा जगत भी तो यही कर रहा है। शांति खोई कहां है? मन के अंदर, और ढूंढ रहा है बाहर, दौड़ रहा है बाहर। हम शांत स्वरूप में स्थित हो जाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं को शांत कर देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं के चित्त को, स्वयं के भावों को स्थिर कर देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। स्थिर हो जाना, धीरे धीरे मन शून्य में चला जाता है। इसी शून्य के मंदिर में परमात्मा का अवतरण होता है, जहां विचार भी शून्य हो गए, हम साक्षी हो गए। वह विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य में करने वाले, वह अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप हो। स्वयं को शांत कर देना, यह बहुत बड़ी सेवा है। शांति फैलाने वाले हो, कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पक्के कुमार हो जो कभी हलचल में ना आवे, ऐसे नहीं यहां नाम वाला हो और फिर वहां पुरानी दुनिया में चले जाए। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह में सेवा में चलते, फिर थोड़ा भी टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। छोड़ी हुई चीज फिर से जाकर ले ले तो अच्छा लगता है। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना? अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गॉडली यूथ समझो। बाबा कह रहे हैं कि पक्के कुमार बनो, कि जो कभी हलचल में ना आए और जो कभी पुरानी दुनिया में ना चले जाए, उस दुनिया को छोड़ आए। एक दुनिया इधर है, एक दुनिया इधर है। ये दुनिया आत्मा की है, वो इंद्रियों की है। ये दुनिया भोग और विलास की दुनिया है, ये दुनिया वैराग्य की दुनिया है। ये दुनिया विलासितापूर्ण जीवन की दुनिया है। इस दुनिया में बाह्य गमन है, ये दुनिया अंतर्गमन की दुनिया है। ये दुनिया जो है वो दौड़ाती है इंद्रियों के पीछे, एक एक इंद्रिय दौड़ाकर दुखों में ले जाता है। ये दुनिया विकारों की दुनिया है, यहां आंखों में आंख रूप की ओर दौड़ाती है, सौंदर्य की ओर दौड़ाती है जो कि क्षणिक है, काम वासना की ओर दौड़ाती है जो कि कभी न पूर्ण होने वाला है, और मनुष्य को एक विषाद लंबे समय के दुख में डुबाने वाला है। वो कभी भी उसको सुख में नहीं ला सकता। यहां की सारी ही दुनिया एक दौड़ की दुनिया है, ये अदौड़ की अवस्था है, जहां कहीं दौड़ना ही नहीं है। आराम ही आराम, क्योंकि आत्मा स्वस्वरूप में स्थित है। उस दुनिया को छोड़ने के बाद, जैसे मिलिट्री में नियम होता है, यहां से वहां गए, बीच में खाई है, एक पुल को डालते हैं, पुल ब्रिज, एक बार उस ओर चले गए पुल को काट देते हैं। इसको कहा जाता है कट द ब्रिजेस। एक बार ब्रिज कट कर दिया तो वापस संकल्प ना आए कि वहां फिर से उस दौड़ कर भाग कर जाए। इसके लिए जो सन्यास का भी यही नियम है, कट द ब्रिजेस। एक बार जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, एक बार जिस संबंध, जिस नाता और जिस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। हर एक नाते की एक आयु होती है, हर एक रिलेशनशिप की एक निर्धारित आयु होती है। उस आयु को पूरा कर दिया, उस रिलेशनशिप को देख लिया, अब वापस उसको बनाने का प्रयत्न नहीं करो। हर एक चेष्टा उस संबंध को पुनः जागृत करने की, वही दुखों को फिर से पुनः स्थापित करेगी। जो संबंधों में दुख आए थे और हमने सोचा था कि यह संबंध बहुत दुख देने वाला है, तोड़ो इसको, तोड़ दिया, क्योंकि बहुत दुखी हुए थे। अभी लंबा समय तक छूटे थे उससे, फिर से उसको स्थापन करने की इच्छा। ये तोड़ना और स्थापन करना सूक्ष्म की बात चल रही है। ऊपर से वो पति पत्नी का, बहन भाई का संबंध वैसा ही है, हम बात कर रहे हैं उसमें छुपे हुए विकार का। वो विकार का संबंध तोड़ा था, उसकी आयु वहां पूर्ण हो चुकी है, फिर से उस आयु को, फिर से उसको नवजीवन देने का प्रयत्न नहीं करो। वो मृत हो चुका है, वो मर चुका है। जो जो संबंध जिसमें वासना निहित थी, हर वो संबंध, हर वो रिलेशनशिप जिसने हमें दुख दिया था, अगर वो समाप्त हो चुका है, उसे समाप्त ही होने दो। फिर से उसकी स्मरण, फिर से उसका स्मरण, फिर से उसी संबंध में जाने की इच्छा, उसको ऑक्सीजन देने का प्रयत्न नहीं करो। वो जागृत हो जाएगा फिर से, क्योंकि उसमें शक्ति बहुत थी, अब भी है। थोड़ा सा भी ध्यान उसके तरफ दिया तो वो जागृत हो जाएगा। इसके लिए पुराने जो भी संबंध थे, मानसिक मेंटल रिलेशनशिप जो मर चुके हैं, उन्हें मरा ही रहने दो, फिर से उन्हें नव प्राण नहीं दो। एक पुरानी दुनिया में जाना अर्थात वही सब कुछ करना जो पहले करते थे। एक तो संबंध, दूसरा करना कर्म जो अज्ञान काल में करते थे। अज्ञान काल अर्थात वह काल नहीं, 7 डेज कोर्स से पहले का। ज्ञान में आने के बाद, सारी धारणाएं आने के बाद भी जो अज्ञान के कार्य करते थे, वह अज्ञान का कार्य। ज्ञान में आने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद, श्रीमत मिलने के बाद भी जो भूले होती थी, जो परमत और मनमत है, जो विस्मृति की अवस्था में किए हुए कर्म है अज्ञान में, वो सारे ही अज्ञान के कार्य है। वो सारे ही आवेग विकारों के, ज्ञान में आने के बाद के, वो सारे ही अज्ञान की ही अवस्था है। कोर्स का और कोर्स न होने का इसका कोई संबंध ज्यादा नहीं है। ज्ञान में आ जाना, इसकी परिभाषा क्या है? कोर्स हो जाना और सेंटर जाना और मुरली सुनना, इससे भी बड़ी और कोई परिभाषा है? ज्ञान में आने की परिभाषा क्या है? कोर्स हो जाना, सेंटर जाना, अमृत वेला करना, थोड़ी बहुत सेवा करना, नियम मर्यादाओं का पालन करना, आत्मा परमात्मा का क्या? ज्ञान में आने का अर्थ क्या है? ज्ञान में आना ये अर्थात ये कुछ नियम है, जैसे वो मिलिट्री में जाते हैं, दाएं मुड़ दाएं, बाएं मुड़ बाएं, मुरली चल तो मुरली में पहुंचा, अमृत वेले उठ तो अमृत वेले उठा, तो सिपाही बन गया क्या? कुछ नियम मर्यादाओं का पालन कर लिया, क्या इसको ज्ञान में आना कहेंगे? क्या इसे मिलिट्री में सिपाही बन जाना कहेंगे? उठो तो उठो, जैसे ही समय मिले उसे अपनी दुनिया याद आ जाती है, उसको अपना घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चे, उनके विचारों में रमन करता है। जैसे कहा फिर से दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, और बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, कदम दाम, तेज चल तो तेज चल, सावधान विश्राम, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना यहाँ? अमृत वेले उठ, उठा, अमृत वेले के बाद फिर कोई ऑर्डर नहीं है तो विश्राम, ऑर्डर नहीं है ना कोई लिखा हुआ? मुरली में आ तो मुरली में आ जा, उसके बाद में क्या करना है अपना अपना, वैसा तो नहीं हो रहा है। इसके लिए ज्ञान में आने के बाद की जो विस्मृति की अवस्था है, उसमें बहुत सारी भूले होती है। इसके लिए कल जो कह रहे थे, निरंतर जागरण, सोना नहीं है बस, सोए की गलती हुई। इसके लिए बाबा कह रहे पुरानी दुनिया में चले जाते हैं।
7 डेज कोर्स में
सिखाएगी, वही तो युक्ति है। 7 डेज कोर्स में ये सारी बातें बताई नहीं थी कि ज्ञानी बनने के बाद फिर माया आएगी, फिर सारे विघ्न आएंगे, फिर हिसाब किताब बाहर आएंगे, फिर ब्राह्मण परिवार से हिसाब किताब आएंगे। बताया था किसी को 7 डेज कोर्स में निखिलेश भाई ये बातें बताई थी क्या कि देह के हिसाब किताब आएंगे, बीमारियां आएगी? मुरली में आया था, पर 7 डेज कोर्स, 7 डेज कोर्स में ये बातों की तो चर्चा ही नहीं थी। वहां तो बताया था स्ट्रेस कम हो जाएगा, पर ये बताया था कि मंजिल बहुत भारी है, दिन रात युद्ध है, दिवस रात राम मां युद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणि मन। ये तो हमको बताया नहीं था किसी ने कि ऐसा अवस्था आने वाली है कि जहां पर एक लड़ाई है।
फिर आपने एक बार सोच ले कहां फंस गए।
वो तो है,
हमने तो सोचा ये खत्म हो जाएगा तो शुरू होता
है। हम तो यहाँ आए थे कि स्ट्रेस को कम कर दे, हमने देखा था इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन बढ़ता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, इसके लिए आए थे। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते, फिर थोड़ा सा टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते। पहले आते हैं तो सेंटर पर लगता है ये तो बहने वही देविया है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, क्या करें और क्या नहीं, सेवा का ऐसा उमंग। धीरे धीरे पता चलता है इनमें वही अवगुण है जो हमने भी है। फिर थोड़ा डिटैच हो जाते। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना, छोड़ देना। ये कौन सी, ये मानसिक घटना है, ये मन की वह अवस्था है कि जिसमें इस संसार के भोग विलास के प्रति जो राग था वो नष्ट हो चुका है। वो नष्ट भी दमन की वजह से नहीं हुआ है, परंतु हमने जाना, भोगा, समझा इसको और पाया मिला कुछ भी तो नहीं, इसके लिए वो छूटा है। इसके लिए नहीं कि जबरदस्ती बताया गया, निषेध, जैसे बच्चे को बताया जाता है ये नहीं करना ये नहीं करना और उत्सुकता उठती है क्या है क्या है जानू, और वैसा वाला नहीं है। यहां हमने, हर आत्मा ने खुद भोगा है और खुद पाया कि जितना भोगा हाथ में कुछ भी नहीं आया। परसों की मुरली, तुमने 84 जन्म भोग कर दुखी, तुम 84 जन्म भोग कर दुखी हुए हो, भोग शब्द यूज हुआ था वहां पर। कुछ चाहिए था मिला, पाने के बाद पता चला कुछ भी नहीं है। कुछ खाना था खाया, सोचा था बहुत स्वादिष्ट है, खा लिया उसके बाद पता चला क्या है, कुछ भी तो नहीं है। यहां तक ही है टेस्ट बस, इसके नीचे जाने के बाद पता ही नहीं हो क्या था, मीठा है कि स्वाद क्या था। सब क्षण भंगुर सुख संसार के, पाए और मिला कुछ भी नहीं। तो हमारा जो त्याग और वैराग है, किसका है आज, नागेश भाई, अशोक भाई, तो हमने जो कुछ पाया उससे जीवन में एक बेर समझ में आया कि रस है ही नहीं इनमें। वो भ्रांति है हमारी कि हमको लगता है ऊपर से कि इसमें रस है ही नहीं संसार के सुखों में। तो बाबा कह रहे गॉडली यूथ ग्रुप, इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे ये सब क्या है, देवताएं हैं, देवता बनकर आए। ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ। युद्ध को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है, गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने के निमित्त आप लोग बनते हो। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाने चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस हो। अगर बैलेंस नहीं तो कुछ नहीं, इसके लिए बैलेंस बहुत जरूरी है।